सत्यवचन। कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है, और हम आपसे यही आशा करते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ ये कार्यक्रम सुनते रहें और हमें पत्र लिखते रहें। तो श्रोताओ, आज से हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। साथ ही इस पत्री में उद्धार के विषय पर भी जोर दिया गया है। गलातियों को लिखी गई इस पत्री में विशेष रूप से इस सिद्धांत की सफाई प्रस्तुत की है कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है, और फलस्वरूप हम यीशु के द्वारा व्यवस्था की दासता से स्वतंत्र किए गए हैं। पौलुस ने इस पत्री में दृढ़तापूर्वक अपने प्रेरित नियुक्त होने तथा अपने संदेश की सच्चाई पर बल दिया है। तो आइए श्रोता, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, और विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले अध्ययन में हम पुराने नियम की पुस्तक में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अपने अध्ययन में नए नियम की पत्रियों में से गलातियों की पत्री का अध्ययन करेंगे, और आज हम देखेंगे उसके परिचय और अध्याय एक के कुछ पदों पर विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम फिर से दूर दराज में रह करके भी रेडियो के माध्यम से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम गलातियों की पत्री से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते हैं निश्चित रूप से हम उसे समझ सकें, अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण कर सकें, और ऐसा होने दीजिए कि हम उसके अनुसार से चलने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, दुखी हैं और चिंतित हैं। पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक को आज आशीषों से परिपूर्ण करें। इस समय हम में से हर एक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि गलातियों की पत्री, यह पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई है। गलातियों की पत्री 1:1 से हमें पता चलता है कि यह लगभग सन 57 में पौलुस जब तीसरी बार प्रचार यात्रा के समय इफिसुस से, जहां वह 2 वर्ष के लिए रुका था, वहीं से उसने इस पत्री को लिखा। परंतु इस विचार के भी पर्याप्त संकेत हैं कि उसने यह पत्र रोमियो के पत्र से कुछ समय पहले ही कुरिन्थ नगर से लिखा था। डॉक्टर लेंस्की का मानना है कि यह पत्र पौलुस ने दूसरी प्रचार यात्रा में लगभग अप्रैल 53 में कुरिन्थ से लिखा है। गलातिया का भ्रमण करने पर पौलुस ने देखा कि उसके बाद वहां यहूदी विश्वासी आए और कुरिन्थ के विश्वासी उनकी शिक्षाओं पर चल रहे थे, अतः पौलुस ने उन्हें पत्र लिखकर सुसमाचार का स्पष्टीकरण किया और यहूदी विश्वासियों की शिक्षा का खंडन किया। पौलुस ने गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं का हर एक प्रचार यात्रा में किया था। मेरे प्रियो, इस पत्र में उसके अतिरिक्त भ्रमण का उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि यह पत्र पौलुस की तीसरी प्रचार यात्रा के बाद गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को उसका अंतिम संदेश है। गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिखा यह पत्र महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां के विश्वासी महत्वपूर्ण थे। अन्य पत्रों में ऐसा नहीं है। इस पत्र का लक्ष्य 2 विचारों को जन्म देता है, उत्तरी गलातिया और दक्षिणी गलातिया। अधिक तर्क संगत और तर्क मत तो यह है कि पौलुस ने यह पत्र उन कलीसियाओं को लिखा था जिनसे उसने प्रथम प्रचार यात्रा में भेंट की थी, परंतु इससे यह संभावना कम नहीं होती कि उसका पत्र व्यापक रूप से पढ़ा जाता था दूर उत्तरी गलातिया तक। मैं तो यह मानता हूं कि पौलुस गलातिया प्रदेश की सब कलीसियाओं को यह पत्र लिख रहा था। गलातिया प्रदेश बहुत बड़ा और मुख्य स्थान था, वहां अनेक कलीसियाएं भी थी। यह शब्द गलातियों जातिवाचक भी हो सकता है और स्थान सूचक भी, अर्थात रोमी राज्य का यह एक भाग। जो भी हो, वहां के लोगों की पहचान उस मिश्रित मानव जगत में आनुवंशिक थी। उस प्रदेश का नाम फ्रांस से विसर्जित गाल जाति के नाम से पड़ गया था। 4 शताब्दी ईसा पूर्व उन्होंने रोमी साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे जीता था और 280 ईस्वी पूर्व में यूनान में देल्फी पर अधिकार किया। वे योद्धा थे और आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे। बिथोनिया के राजा निकोमिडिस प्रथम के आक्रमण पर वे एशिया माइनर में प्रवेश कर गए और गृह युद्ध में उसकी सहायता भी की। उन्हें वह स्थान बहुत अच्छा लगा, वहां की जलवायु मनोहर थी और प्रदेश सुंदर था। जब आप कभी तुर्किस्तान जाएंगे तो आपको वह स्थान बहुत ही आनंददायक और आश्चर्य प्राप्त करेगा, क्योंकि वह स्थान बहुत ही मनोहर है। 189 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी यूरोप की इन जातियों पर रोम ने अधिकार किया और वह एक प्रांत बन गया। उनकी सीमाएं अलग अलग थी और वे अपनी ही संस्कृति और भाषा को मानते थे। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा की कलीसियाएं कभी गलातिया प्रदेश में थे, इसी कारण पौलुस उन्हें सामान्यतः गलातिया कहता है। केसर ने इसके बारे में कहा है, गॉल जाति की चरित्रीय दुर्बलता यह है कि वे निर्णय लेने में दुचित्ते, परिवर्तन प्रिय और विश्वास योग्य नहीं होते हैं। किसी और ने कहा, स्पष्टवादी, बलात्, प्रभावी, अति बुद्धिमान, दिखावा करने वाले, अत्यधिक अस्थिर, निस्सारता के फल हैं। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम की पुस्तक में आपको स्मरण होगा कि गलाती व्यवसायी एक दिन पौलुस को देवता बना रहे थे और दूसरे दिन उन्होंने उसे पत्थरवाह कर दिया। हम क्या करते हैं? हम किसी को नेता चुन लेते हैं और फिर उसे हटाना चाहते हैं। गलातियों को लिखा पत्र हमारे लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, क्योंकि वह पत्र ऐसे मनुष्यों को लिखा गया था जो अनेक परिप्रेक्ष्यों में हमारे समान थे। उनका स्वभाव ऐसा ही था, उनका क्रोध और अनेक धार्मिक आस्थाएं आदि। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यह एक कठोर, ठोस और पावन संदेश है। गलातियों के पत्री 1:6-9, 3:1-5 में हम इसे देख पाते हैं। इस पत्र में आचरण के सुधार के निर्देश नहीं है, जैसे कि कुरिन्थ की कलिसिया को लिखे गए पत्रों में हैं, परंतु यह पत्र सुधारवादी है। गलातिया के विश्वासी संकट में थे, क्योंकि उनके विश्वास की नींव पर आघात किया जा रहा था, हर एक बात पर खतरा मंडरा रहा था। अतः इस पत्र में न तो सराहना है, न प्रशंसा और न ही धन्यवाद। इसमें प्रार्थना का निवेदन भी नहीं है। मसीह में उनके विश्वास का उल्लेख भी नहीं किया गया है। पौलुस के किसी साथी का भी उल्लेख नहीं है। यदि आप इस पत्र की तुलना पौलुस की अन्य पत्रियों से करें तो आप पाएंगे कि यह पत्र सर्वथा भिन्न है। हम दूसरी बात इस पत्र में देखते हैं कि इस पत्र में हम देखेंगे कि प्रेरित पौलुस अपना दिल खोलकर रख देता है। इसमें उसकी भावनाएं और मनोकामना व्यक्त है। यह उसका विवादी पत्र है। वह रूढ़िवाद को सहन नहीं कर सकता है कि रोम की कलिसिया को लिखा पत्र पौलुस के मस्तिष्क की उपज था, जबकि गलातिया की कलिसियाओं को लिखा यह पत्र उसके दिल का गुब्बार था। किसी धर्म विज्ञान के ज्ञाता ने लिखा, रोम की कलिसिया को लिखे पत्र में तो जो बातें विधिवत कही गई है, वही बातें गलातिया प्रदेश की कलिसियाओं को लिखे पत्र में विवाद स्वरूप प्रस्तुत है। तीसरी बात हम देखते हैं, यह पत्र किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद से मुक्ति पाने की घोषणा है। यह एक ध्यान देने योग्य रोचक बात है कि रूढ़िवादी गलातिया की कलिसियाओं को लिखे पत्र पर अधिक समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए यह झिड़की है। मार्टिन लूथर का यह मनपसंद पत्र था। उसने कहा, यह मेरा पत्र, मैं इसके साथ वैधानिक रूप से बंधा हूं। यह धर्म सुधार का पताका था। इसे आरंभिक कलिसिया का स्वतंत्र पत्र भी कहा जाता था। सुसमाचार प्रचार पर आक्रमण का वास्तविक गढ़ कहलाता है। जैसा किसी ने कहा, इसके मस्तिष्क पर अनंत विजय है। मेरे मित्रों, यह पत्र जॉन वेस्ली के लिए आगे बढ़ने का कारण था। वह अमेरिका में रेड इंडियन लोगों में सेवा करने आए थे, परंतु उन्होंने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने कहा, मैं रेड इंडियन जाति को मन फिराव का संदेश देने आया था, परंतु जॉन वेस्ली का मन परिवर्तन कौन करवाएगा? वह इंग्लैंड लौट गए, वहां उनका मन परिवर्तन हुआ। उनका मन फिराव सुसमाचार पर आधारित कहलाता है, जो वास्तव में बाइबल व्यक्त मन फिराव है। जॉन वेस्ली ने जागृति अभियान आरंभ किया और इसी पत्र से प्रचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों को मसीह का उद्धारक ज्ञान प्राप्त हुआ और इंग्लैंड का उद्धार हुआ। उनके द्वारा एक नवदीक्षित दिलबर फोर्स ने बाल श्रम और औद्योगिक क्रांति में मजदूरों के कल्याण के वृहद योगदान भी दिया था। मेरे मित्र, एक प्रकार से मैं यह मानता हूं कि यह पत्र विगत 2000 वर्षों में प्रत्येक आत्मिक अभियान एवं नव जागृति की पृष्ठभूमि वरन रीढ़ की हड्डी रहा है। और मेरे मित्रों, यह पत्र अन्य नव जागृतियों के लिए भी पृष्ठभूमि है। मैं आज अपने देश में पवित्र आत्मा का कार्य देखना चाहता हूं। मैं गलातिया के पत्र को अपने देश में उद्घोषित सुनना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पत्र अवश्य ही जागृति लाएगा। चौथी बात हम देखते हैं, गलातिया का पत्र विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने और धर्मशास्त्र के धर्म सिद्धांतों के बचाव की सर्वशक्तिमान घोषणा है। यह किसी भी आक्रमण से मसीही विश्वास की रक्षा हेतु, उसके सत्य की रक्षा हेतु परमेश्वर द्वारा रचा खंडन मंडन है। पापी अनुग्रह द्वारा उद्धार ही नहीं पाता है, वरन अनुग्रह द्वारा जीवन में आगे भी बढ़ता है। अनुग्रह जीवन का मार्ग और जीने का मार्ग है। प्रसंगवश ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और गलातियों की पत्री से देखेंगे। विषय होगा अभिवादन, उद्घोषण, ज्वलंत घोषणा, अरब में पौलुस का अनुभव। गलातियों की कलिसियाओं का लिखा यह पत्र किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद के खंडन हेतु परमेश्वर का बचाव पत्र है। इसमें मूसा की व्यवस्था को न तो अमान्य, न तुच्छ, न अनुचित घोषित किया गया है। उसकी भव्यता, सिद्धता, अनिवार्यताएं, परिपूर्णता और उद्देश्य इसमें संजोए रखे गए हैं। परंतु व्यवस्था के ये मार्ग मनुष्य को परमेश्वर के निकट आने में सहायक नहीं है। परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहराए जाने का मनुष्य के पास एक और उपाय है, जो मूसा की व्यवस्था से सर्वथा भिन्न है। यह नया उपाय विश्वास का, जिसका शीर्षक है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। इसमें विश्वास मुख्य है। मेरे मित्रों, नए नियम में तीन पत्र हैं। प्रिय मित्रों, नए नियम में तीन पत्र हबक्कूक का संदर्भ देते हैं। 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 17 पद में धर्मी जन पर बल दिया गया है। तब इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 38 पद में जीवित रहेगा पर बल दिया गया है। गलातियों के पत्र 3 अध्याय उसके 11 पद में विश्वास पर बल दिया गया है। मेरे प्रियो, रोमियो के पत्र में इस तथ्य पर बल दिया गया है कि मनुष्य व्यवस्था की अपेक्षा विश्वास द्वारा परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहरेगा। गलातिया की कलिसियाओं को लिखे पत्र में पौलुस सुसमाचार को उन मनुष्यों से बचा रहा है जो विश्वास द्वारा धर्मी ठहरने के साथ व्यवस्था पालन को भी अनिवार्य बताते थे। विश्वास तथा व्यवस्था पालन यहूदी विश्वासियों की रूढ़िवादी आस्था थी, जबकि पौलुस कहता था विश्वास तथा अन्य कुछ भी नहीं है। यहूदी विश्वासी पौलुस की प्रेरिताई और केवल विश्वास के प्रचार पर संदेह करते थे। अतः पौलुस अपनी प्रेरिताई का बचाव करते हुए अनुग्रह के सुसमाचार की एकमात्र उद्धारक क्षमता की उद्घोषणा करता है। तो आइए हम देखें अभिवादन और रूखा अभिनंदन। गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। पौलुस सीधा सा कहता है कि वह प्रेरित है। यहाँ प्रेरित शब्द का उपयोग 2 अर्थों में किया गया है। पहला हम देखेंगे 12 में से एक, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 21 से 26 पद में आप पढ़ सकते हैं। उसमें हम देखेंगे क में यीशु की 3 वर्षीय सेवा में उसके साथ, जो पद 21 में है, और दूसरा है ख में उसके पुनरुत्थान के बाद की सेवा की गवाही, पद 22 में है, और ग पॉइंट में देखते हैं मसीह के द्वारा चुना गया, अर्थात पद 22 में, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 15, 26 अध्याय उसके 16 और 17 पद में। ये पहली बात हम देखते हैं 12 में से एक के विषय में। अब दूसरी बात को देखते हैं जो शिष्यों से संबंधित है, प्रेरितों के बारे में भेजा हुआ। प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 22 पद के अनुसार व्यापक उपयोग है। मेरे विचार में पौलुस यहूदा के स्थान पर था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों ने मत्तियाह को चुनकर यहूदा का स्थान दिया था, परंतु प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 15 से 26 पद के अतिरिक्त मत्तियाह के बारे में और कुछ और कहीं भी नहीं कहा गया है। यदि पवित्र आत्मा ने उसे चुना था तो कहीं तो उस पर अपना मुहर लगाया होगा। पौलुस ने तो अपनी प्रेरिताई सिद्ध कर दी थी, जबकि मत्तियाह नहीं कर पाया। मत्तियाह का चुनाव पेंतिकोस्त से पूर्व का था, अर्थात पवित्र आत्मा के अवतरण से पूर्व। इस आधार पर मैं सोचता हूं कि पवित्र आत्मा को मत्तियाह के चयन से कोई प्रयोजन नहीं था। आज हमारी कलीसियाओं में भी अनेक चुनाव किए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं होते हैं। अतः मेरा विचार तो यही है कि यहूदा के स्थान पर परमेश्वर ने पौलुस को चुना। मेरे मित्रों, इस पद में पौलुस कहता है कि वह मनुष्यों के द्वारा नहीं है। यूनानी भाषा की अभिव्यक्ति में इसका अभिप्राय है कि प्रथानुसार मनुष्यों, बिशप या कलीसिया की समिति के हाथ रखने के द्वारा नहीं। पौलुस के सिर पर प्रेरितों ने हाथ रखकर यह नहीं कहा था, साम दाम भेद दंड तुम प्रेरित हो। मेरे प्रियो, तो फिर पौलुस प्रेरित कैसे था? वह मसीह यीशु और मृतकों में से उसे जीवित करने वाले उसके पिता परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रभु यीशु ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे बुलाया और उसे इस पद के लिए पृथक किया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मुझे अभिषेक करने से पहले कहा गया था कि मुझे बाइबल कॉलेज से डिग्री लेना आवश्यक है, अर्थात किसी भी कलीसिया में पास्टर या सेवक बनने के लिए आपको बाइबल कॉलेज से, सेमिनारी से डिग्री लेने की आवश्यकता है। यह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया था, यह एक वैधानिक पक्ष है। कलीसिया की समिति ने मेरी परीक्षा ली और मुझे परखा, तब मेरा चयन किया गया। दूसरी कलीसिया में मनुष्यों के एक समूह ने मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना की और कहा कि अब तुम परमेश्वर के सेवक हो सकते हो। मैं ऐसा सेवक हूँ, परंतु पौलुस कहता है, मैं ऐसा प्रेरित नहीं हूँ। इसमें मनुष्यों की कोई भी भूमिका नहीं है। मैं सीधा प्रभु यीशु मसीह और उसे मृतकों में से जीवित करने वाले परमेश्वर पिता द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरित था, और वह गलातिया की कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है, परंतु उसका अभिवादन कुछ रूखा सा है। आइए हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 2 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। मेरे प्रियो, यहाँ आप देखेंगे कि पौलुस का अभिवादन रूखा, संक्षिप्त, औपचारिक और स्पष्ट है। यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया है। वह किसी एक कलीसिया को नहीं, अनेक कलीसियाओं को लिख रहा है, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। नए नियम में कलीसिया शब्द 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक अर्थ है विश्वासियों का समूह, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। कलीसिया का दूसरा अर्थ है स्थानीय कलीसिया। यहां पर पौलुस का अभिप्राय स्थानीय कलीसिया से ही है। गलातिया प्रदेश में अनेक स्थानों में स्थानीय कलीसियाएं थी, अंताकिया, दर्बे, लुस्त्रा और अन्य कलीसियाएं, जहां जहां वह गया। अतः यहाँ कलीसिया का अर्थ है स्थानीय विश्वासी समुदाय, न कि वैश्विक विश्वासी समुदाय। इफिसियों के पत्र में हम कलीसिया का वैश्विक रूप को देखते हैं, अदृश्य कलीसिया, परंतु इस अदृश्य देह को आज दृश्यमान देह प्रकट होना है। मेरे प्रियो, विश्वासियों की पहचान विश्वासियों के स्थानीय समूह में होना आवश्यक है। आज बहुत से लोग अपने आप को विश्वासी कहते तो हैं, परंतु स्थानीय कलीसियाओं में उनकी कोई भी सदस्यता नहीं होती है, और इसी कारण से कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी अपने आप को कलीसिया से अलग पाते हैं। जी हाँ, पौलुस हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि हम सबको एक झुंड, एक समूह अर्थात सदस्यता के साथ परमेश्वर की निकटता में आना है, एक कलीसिया में होकर के। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग अपने निकटतम कलीसिया के सदस्य हैं। यदि आज आप नहीं हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आज आप सही निर्णय लें और किसी भी निकटतम कलीसिया के सदस्य अवश्य बने। वहां पर आप आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें और उस संगति में आप बढ़ते चले जाएं। जी हाँ, यह आपके आत्मिक जीवन को बल प्रदान करेगा। और पौलुस भी यहाँ पर इन्हीं बातों पर जोर देता है। मेरे प्रिय मित्र, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही गलातिया के बारे में सीखा है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि पौलुस किस प्रकार से गलातिया के विश्वासियों को और आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे एवं आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बताओ तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बताओ तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पास घुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास घुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।